SBS हिंदी हमारी कहानियाँ फेसबुक पर।
नमस्कार, SBS हिंदी से मैं हूँ साहिल मकड़ और आज मेरे साथ एक खास मेहमान है, इंडियन हाई कमिश्नर मनप्रीत वोरा। मनप्रीत वोरा जी, SBS हिंदी में आपका बहुत स्वागत है।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद
जी। सर, सबसे पहले हम बात करेंगे जो हाल ही आज ही जो संपन्न हुआ है, सिडनी डायलॉग, इसके बारे में बताइए कि इस डायलॉग को हमने क्यों आयोजित किया था, इसका मकसद क्या था और इसका निष्कर्ष क्या निकला।
इसको आयोजित करने वाली तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार है और उनकी एक संस्था है एसपी, उनका था, लेकिन उन्होंने इंडिया को इसमें मेन पार्टनर कंट्री चुना क्योंकि साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्यूचर जो है उसके बारे में ऑस्ट्रेलिया का कहना है, सोचना है और हम भी उससे समर्थन करते हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ये साइबर के बारे में जो टेक्नोलॉजी है इसका मिसयूज़ भी हो रहा है, इसका बहुत अच्छा उपयोग भी है, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां आती हैं और उसके बारे में रूल्स रेगुलेशंस कैसे आगे किया जाए, इसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का आपस में ये है कि एक साथ मिलकर हम इस पे काम कर सकते हैं
जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी का भी कल एक बयान आया था, उसके बाद स्कॉट मॉरिसन का भी एक बयान आया था, तो आप इस इन दोनों देशों के बढ़ते हुए संबंध को कैसे देखते हैं, आगे हम इसको कैसे ले जा सकते हैं।
जी, हमारे संबंध इस वक्त बहुत ही बढ़िया हैं। आपको, आपके दर्शकों को, सबको मालूम होगा कि पिछले साल जून 2020 में हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अपग्रेड किया अपने लेवल को और उसके बाद अनेक मुद्दों पे हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत इंटेंसिव चर्चे हो रहे हैं। हम इस वक्त एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट भी नेगोशिएट कर रहे हैं और बड़ी एम्बिशियस टाइमलाइंस हैं उसके बारे में। हो सकता है कि अगले कुछ हफ्तों, कुछ महीनों में उसमें काफ़ी कुछ तय भी हो जाए। इसलिए इस वक्त इकोनॉमिक रिलेशनशिप को बढ़ाने का भी बहुत अच्छा मौका है क्योंकि हर देश चाहते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों चाहते हैं कि ट्रेड पार्टनर्स डाइवर्सिफाई हों, सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफाई हों, जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमीज़ हैं उसमें एक बड़ा अच्छा फिट है आपस में। तो इसलिए अनेक विषयों पे हम जो है बहुत अच्छा एक साथ मिल के काम कर सकते हैं, अपने हित के लिए, ऑस्ट्रेलिया के हित में, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए।
जी,
तो इस वक्त रिलेशनशिप बहुत एक अच्छी सड़क पे चल रही है और हमें पूरी उम्मीद है, आशा करता हूँ कि ये जो हमारी जो रिलेशनशिप है ये और भी स्ट्रॉन्ग होगी अगले कुछ महीनों और वर्षों में।
जी सर, जैसे आपने बताया कि हमने अपने डायलॉग को अपग्रेड किया है, कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग कर दिया बायलेटरल डायलॉग से, अब काफ़ी टाइम से हम ये भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मॉरिसन में काफ़ी बॉनहोमी है, एक दूसरे को काफ़ी विशेष करते हैं, पसंद करते हैं, तो इसके पीछे क्या चाइना इज़ द रीज़न और कुछ लोग बोलते हैं कि इट्स अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, और क्या हम इसको बोल सकते हैं जेन्युइन रिलेशन है दोनों नेताओं के बीच और दोनों देशों के बीच में।
जी, कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग नहीं है, पार्टनरशिप है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। नहीं, ये तो एक नेचुरल एवोल्यूशन है हमारे संबंधों का क्योंकि 11 साल पहले हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंटर किया था और उसके बाद क्योंकि रिलेशनशिप बहुत बढ़ रही है, बड़े अच्छे तरीके से बढ़ रही है, हमारे भारतीय मूल के नागरिक भी यहाँ बढ़ रहे हैं और इतना कुछ आगे भी संभव है, इसलिए पिछले साल ये तय हुआ कि इसको कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एलिवेट किया जाए और इसमें जो है जियोपॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स, हर चीज़ में हर चीज़ का थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ये स्टैंड अलोन पार्टनरशिप है, इसमें हम म्यूचुअल बेनिफिट है हम दोनों का ये करने से और इसमें कोई ये नहीं है कि भी तीसरी फोर्स के कारण ये हुआ है, कारण इसका अपना है, वजह इसकी अपनी जो है इनर स्ट्रेंथ है रिलेशनशिप की, लेकिन जो जियोपॉलिटिक्स हैं, जो जियो इकोनॉमिक्स हैं उनसे दूर तो नहीं रहा जा सकता, उन चीज़ों का भी इम्पैक्ट तो होता है हर रिलेशनशिप पे, लेकिन ये अपने स्ट्रेंथ पे खड़ी है।
जी, भारत क्वाड का हिस्सा है लेकिन अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने जो है एक नया अलायंस खड़ा किया है यूके और यूएस के साथ, जिसे हम ऑकस भी कहते हैं, तो इसको भारत किस नज़रिए से देखता है?
ऐसा क्वाड एक अलायंस नहीं है, क्वाड तो एक पार्टनरशिप है चार कंट्रीज जो कि लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज हैं, जो कि इंडो पैसिफिक पावर्स हैं, जो कि इस इंडो पैसिफिक रीजन खासकर उसको देखती हैं कि उसमें चारों मिलके बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं रीजन के लिए, रीजन में जो इंडिविजुअल कंट्रीज़ हैं उनके लिए। ऑकस तो एक तीन कंट्री की टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है जो कि अभी इन तीन देशों ने अनाउंस की है। उसमें जो है हिंदुस्तान शामिल नहीं है, दिस इज़ बिटवीन USA, UK एंड ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने सोचा कि भी उनको जो है टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप मिलिट्री फील्ड में वो कर सकते हैं। तो इस पे तो हमारा, क्योंकि हम इसके पार्ट नहीं हैं, इस पे हमारा क्या मुद्दा होगा? ऑस्ट्रेलिया ने अपने लिहाज से, तीनों मुल्कों ने अपने लिहाज से सोचा कि ये उनके फ़ायदे के लिए है, तो उनकी अपनी सॉवरेन डिसीजन है।
जी सर, ऐसा भी कहा जाता है कि क्वाड को एक्सपैंड करना चाहिए, आपको लगता है कि नियर फ्यूचर में हम कुछ और कंट्रीज़ को इसमें शामिल होता हुआ देख सकते हैं?
नहीं, नियर फ्यूचर में तो मेरा ख्याल है इस पे कोई अभी इस वक्त चर्चा नहीं हो रही है। क्वाड प्लस कई लोग कहते हैं, उसमें ये है कि चारों कंट्रीज़ मुद्दों के मुताबिक किसी और कंट्री के साथ भी उस मुद्दे पर काम कर सकते हैं, उनकी सहायता ले सकते हैं, लेकिन क्वाड जो है उसकी मेंबरशिप क्वाड से, मतलब चार देशों से आगे बढ़ जाए, इस वक्त इस पे चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि अभी ये बहुत ही एक लिहाज से एक नई पार्टनरशिप है। हालांकि शुरुआत तो इसकी 2004 में हुई थी जब सुनामी हुई थी साउथ ईस्ट एशिया में, लेकिन उसके बाद ये जो अभी नया इसमें जो स्फूर्ति आई है
हाल ही में रिवाइव किया गया,
हाल ही में हुआ है, तो अभी मेरा ख्याल है इसी को कुछ करने दें, कुछ नतीजा निकले, जो जिन विषयों पे क्वाड कोशिश कर रहा है काम करने की उसको डिलीवर करें, हम इस पे मेरा ख्याल है ज़्यादा फोकस है इस वक्त।
जी सर, एक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा जो हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत इंपॉर्टेंट बना हुआ है, वो है COP26 से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। आखिरी मिनट पे भारत की वजह से ऐसा कहा जाता है कि जो पूरी ट्रीटी थी या जो एग्रीमेंट था या ड्राफ्ट था उसका, उसको वाटर डाउन किया गया, और उस जहाँ पे हमने कोयले को फेस आउट करना था वहाँ फेस डाउन किया गया। तो इसमें भारत की काफ़ी को लेके काफ़ी बातचीत चल रही है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि भारत का क्या स्टैंड है?
देखिए, वाटर डाउन तो अभी जिस मुल्क को लगता है या जिन लोगों को लगता है कि ये वाटर डाउन है, ये तो उनकी राय है। हमारे हिसाब से हमने जो कहा बड़ा रियलिस्टिक कहा, हमने जो कहा अपने हित को देखते हुए कहा, हम नहीं कर सकते, रियलिस्टिक बात है ये कि हम कोल को इमीडिएटली नहीं फेज़ आउट कर सकते
जी,
क्योंकि अभी दूसरी टेक्नोलॉजी, दूसरा फाइनेंस जो चाहिए वो इतनी जल्दी नहीं आगे आ रहा है, कुछ वक्त लगेगा हमको टू ट्रांजिशन टू अ कोल फ्री और अ फॉसिल फ्री इकोनॉमी। तो ये बड़ी रियलिस्टिक हमने बात की है वहाँ पर, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है अनरियलिस्टिक बात करिए फिर आप उस पर कुछ करना सीखिए, क्योंकि भारत जब भी कोई इंटरनेशनल समझौता करता है, उसका हिस्सा बनता है, तो भारत जो है उसको ऑब्जर्व करता है
जी,
भारत अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को तोड़ता नहीं है
जी,
तो हम वही कमिटमेंट ले सकते हैं जो हमें लगे कि हम उसको लागू कर सकेंगे
जी।
तो हमें ये विश्वास है कि फेज डाउन जो है वो करना बेहतर है, फेज़ आउट अल्टीमेटली तो ये होगा
जी,
क्योंकि टेक्नोलॉजी और आएगी आगे, लेकिन जब तक वो नहीं होता है उस पर कमिटमेंट करना मुश्किल है। तो हमने एक बड़ी रियलिस्टिक बात वहाँ की है, कोई वाटर डाउन नहीं हमने किया, हमने रियलिस्टिक बात की है
जी।
और हमेशा भारत जो है वो हर चैलेंज का, हर मुद्दे का, हर प्रॉब्लम का उसके सोल्यूशन का हिस्सा होता है, भारत कभी खुद प्रॉब्लम नहीं होता है
जी।
अभी अगर एमिशंस हैं दुनिया में, चाहे वो फॉसिल एमिशंस भी हैं, उसकी मेन वजह भारत नहीं है
जी,
हिस्टोरिकली भी नहीं है और प्रेजेंटली भी नहीं है, वी आर स्टिल अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ
जी। भारत एक विकासशील देश है, प्रगति पे है, उसको शायद अभी कोयला चाहिए, अभी टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। सर एक पेरिस
हमें ऊर्जा चाहिए, हमारे देशवासियों को ऊर्जा चाहिए
जी।
इस वक्त भी हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन जो है ऊर्जा का ग्लोबल एवरेज से बहुत कम है, और आगे डेवलप्ड मुल्कों को तो छोड़िए, उनसे तो हमारा बहुत ज़्यादा कम है, वी आर 1/8 ऑफ द ग्लोबल एवरेज. सो यू नो हमें अभी ऊर्जा डेवलपिंग मुल्क है हमारा, हमारे देशवासियों को, हमारी इंडस्ट्री को, सबको ऊर्जा चाहिए, बेसिक ऊर्जा
चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल सर. पेरिस एग्रीमेंट में एक बात कही गई थी कि जितने भी विकसित देश हैं वो विकासशील देशों को अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें ताकि कार्बन डाइऑक्साइड कम निकले, ग्रीन गैसेज जो है उनका कम निकले और क्लाइमेट पर कंट्रोल हो. क्या आपको लगता है कि विकसित देशों ने विकासशील देशों के साथ टेक्नोलॉजी शेयर की है या अभी भी उनमें आनाकानी है?
जी नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था COP26 में और भारत ने इस विषय को उठाया, पूरे डेवलपिंग वर्ल्ड ने इस विषय को उठाया कि आप कमिटमेंट्स पे, एमिशंस की कमिटमेंट्स पे तो बहुत यू नो वो हो रहा है, जोर दिया जा रहा है, लेकिन जो कमिटमेंट्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, फाइनेंस प्रोवाइडिंग की, मिटिगेशन अडेप्टेशन के लिए जो क्लाइमेट फाइनेंस है, ग्रीन एनर्जी फंड की, वो तो कमिटमेंट्स पूरी नहीं हुई हैं.
बिल्कुल.
तो बड़ा ज़रूरी है कि वो भी पूरी हो और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा अपने संदेश में ग्लासगो में कि भी ये बहुत ज़रूरी है, $1 trillion चाहिए.
जी बिल्कुल.
जी हाँ,
तो इसलिए भारत को एक कॉर्नर करना शायद गलत होगा.
जी हाँ, हम कॉर्नर होने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने जैसे कहा कि हम तो सोल्यूशन का हिस्सा हैं.
जी,
हम प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं हैं.
सर, आपने ये भी देखा होगा काफ़ी दिनों से सिडनी में या मेलबर्न में इंडियन कम्युनिटी में भी काफ़ी जो है मतभेद उभर के सामने आ रहे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में होने वाला फार्मर प्रोटेस्ट हो या कोई तिरंगा रैली हो, तो इससे भारतीय समाज का ऑस्ट्रेलिया में नाम खराब होता है. इसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे?
देखिए, हम डेमोक्रेसी हैं, इंडिया भी डेमोक्रेसी है, ऑस्ट्रेलिया भी डेमोक्रेसी है, किसी को भी डिसेंट का पूरा हक है और अगर कोई डिफरेंट ओपिनियन रखता है तो डेमोक्रेसी में उसको पूरी छूट है अपना ओपिनियन को एक्सप्रेस करने की, लेकिन ये जो है विद इन रूल ऑफ लॉ रहना चाहिए हमेशा. ये भी डेमोक्रेसी का एक पिलर है, रूल ऑफ लॉ को ऑब्जर्व करना चाहिए और मतभेद जो हैं वो किसी दुश्मनी में नहीं बदलने चाहिए. ये यूनिटी जो है भारतीय मूल के लोगों की, ये बड़ी वैल्यूबल है और इसको ज़रूर गार्ड करना चाहिए. ये यूनिटी ही जो है हमारी भारतीयता की यूनिटी जो है, यही भारतीय समुदाय को और भारतीय मूल के लोगों को एक पहचान देती है.
जी.
तो इसमें जो है, जैसा मैंने कहा कि मतभेद हो सकता है किसी विषय पे, किसी कानून पे, लेकिन वो दुश्मनी में नहीं बदलनी चाहिए. तो मैं तो हमेशा अपील करता हूँ सबसे कि जो है आप इसको एक बिल्कुल एक एक तरीके से डिस्कशन का मुद्दा ज़रूर बनाएं, लेकिन उसके ज़्यादा और कुछ नहीं होना चाहिए. ये एक, जैसा मैंने कहा, दुश्मनी या कोई लड़ाई झगड़ा हो उसका मुद्दा नहीं बनना चाहिए.
जी सर, क्या हमारी एजेंसियां, भारत की एजेंसियां इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ऐसे जब भी मतभेद होते हैं तो कुछ एंटी सोशल, एंटी इंडिया एलिमेंट्स होते हैं जो इस तरीके की हरकतों को बढ़ावा देते हैं, तो क्या उसको लेकर हम चिंतित हैं? क्योंकि अभी हमने हाल ही में पढ़ा था कि कुछ ऐसे लोगों को जो है इंडिया वापस नहीं आने दिया जाएगा जो OCI कार्ड होल्डर्स हैं, विदेशों में रहते हैं, जो भारत के खिलाफ कुछ एक्टिविटी करते हैं, तो क्या इस बात को लेकर भी आप चिंतित हैं?
नहीं, ये बात तो जो आपने है अभी लास्ट में कही, ऐसा तो कोई वो नहीं है.
जी,
यू नो वी रिमेन एन ओपन कंट्री. OCI कार्ड होल्डर्स यू नो बिल्कुल जब मर्जी आए, भारत उनका भी मुल्क है.
जी.
एक तरीके से लेकिन जो है जो एक तरीके से ये जो कुछ तत्व होते हैं.
जी.
जो कि इस तरीके की बात करते हैं, जैसा जिस पे जिसकी तरफ आपने इशारा किया.
जी.
वो बहुत ही चंद छोटे तत्व के लोग होते हैं, उनकी न्यूसेंस वैल्यू बहुत होती है, उनकी डेंजर वैल्यू काफ़ी होती है और ज़रूरी हो है कि बाकी जो समुदाय है, बाकी सब जो लोग हैं जो कि ये एक तरीके से अच्छी सोच विचार, सूझबूझ की तरीके से काम करना चाहते हैं, वो उनको आइसोलेट करें और फ्रिंज ग्रुप्स जो हैं उनको फ्रिंज ही रहें, उनको कोई हवा ना मिले, वो ये बहुत ज़रूरी है.
जी सर, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन जो है अगले साल भारत जाने वाले हैं, तो उसको लेके क्या तैयारियां चल रही हैं, उनका क्या रहेगा वहां पे एजेंडा और भारत इसको कैसे देखता है?
जी, अभी कोई इस पे कोई ठोस प्लानिंग नहीं है, कोई डेट वगैरह नहीं है कि कब ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भारत जाएंगे, लेकिन जब भी जा पाए ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर तो उनका वहाँ बहुत स्वागत होगा। हमारी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी है और बड़े मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे और कई बड़े हम समझौते करेंगे तो जब भी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भारत आना चाहें
वेरी मैं आपको बताता हूँ सर कि जब रीसेंट क्वाड मीटिंग के बाद पीएम ने हमारे को ब्रीफिंग दी तो उन्होंने बताया कि बड़े खुशी से बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनको फिर से न्योता दिया है। इस बार वो चाहते हैं कि वो अपनी प्रधानमंत्री मॉरिसन अपनी वाइफ के साथ इंडिया आए, तो उन्होंने कहा कि वो बहुत एक्साइटेड हैं इंडिया जाने के लिए और हो सकता है कि शायद वो आने वाले 15 अगस्त या 26 जनवरी के दौरान भारत चले जाएँ, तो ऐसा उनका मानना है कि वो तैयारी कर रहे हैं।
देखिए प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन तो पिछले वर्ष भी दो बारी कोशिश हुई थी, प्लान भी था उनका भारत जाने का, लेकिन कुछ वजहों से वो नहीं जा पाए। आपको मालूम है बुश फायर्स वगैरह हो गई एक बारी, तो वो नहीं जा पाए, इसलिए पेंडिंग विजिट है उनकी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको दोबारा न्योता दिया जैसा आपने अभी कहा, और हमें बड़ी खुशी होगी जब भी वो जा सकें, जब भी प्लानिंग हो सके, डेट्स जो हैं वो कन्वीनियंट हों, सो वी लुक फॉरवर्ड टू दैट।
जी सर, आपको अब काफ़ी समय हो गया है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, तो आपका एक्सपीरियंस क्या है यहाँ पे? आपने इंडियन कम्युनिटी से बहुत इंटरेक्ट किया है, आप यहाँ के पॉलिटिशियंस इंटरेक्ट करते हैं, डिप्लोमेट्स इंटरेक्ट करते हैं, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है आपका?
जी अभी तो मैं खैर इतने लोगों से नहीं मिल पाया क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मैं ज़्यादा जा भी नहीं पाया। ये पहली बारी साढ़े छः महीने के बाद मैं सिडनी आ पाया हूँ कैनबेरा से, जो कि बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं हुआ। लेकिन जितना मैंने अब तक देखा है, सुना है, मिल सका हूँ लोगों को, भारतीय मूल के लोगों को, ऑस्ट्रेलियन लोगों को, ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस को, तो एक बहुत ही मुझे हर्ष है कि कितनी अच्छी हमारी रिलेशनशिप है, कितना उसमें इस वक्त जो है सॉलिड विषय हैं, सॉलिड मुद्दे हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं, जिनसे फ़ायदा है दोनों मुल्कों का। मुझे बड़ी खुशी है कि भारतीय मूल के लोग जो हैं वो यहाँ इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनको ऑस्ट्रेलिया के लोग, ऑस्ट्रेलिया के पॉलिटिशियंस, ऑफिशियल सब कितनी कदर करते हैं उनकी कंट्रीब्यूशन की, उनकी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, जो सोशल लाइफ की कंट्रीब्यूशन है, लॉ अबाइडिंग है भारतीय मूल के लोग, बहुत अनेक तरह से वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से उनकी जो है संख्या भी बढ़ रही है। तो ये एक लिविंग ब्रिजेस हैं हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो बड़ी प्रसन्नता होती है मुझे ये सब देख के।
जी सर, आखिरी दो सवाल, आप बोल रहे हैं कि ब्रिजेस हैं, तो हम इन ब्रिजेस को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, किसी ट्रेड के क्षेत्र में या किसी स्किल माइग्रेशन के क्षेत्र में, आप कहाँ देखते हैं, कहाँ है हमारे पास स्कोप इस चीज़ को बढ़ाने
का? हर क्षेत्र में स्कोप है इस वक्त। हमारी जो ट्रेड रिलेशनशिप है, जो इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, वो शायद अभी भी बिलो पोटेंशियल है
जी।
बहुत मेरा ख्याल है ये बढ़ सकती है और शीघ्र बढ़ सकती है, तो उसमें ठोस कदम जो हैं वो लोगों को उठाने पड़ते हैं, मतलब कि बिजनेसमैन, बिजनेस पीपल, एंटरप्रेन्योर्स, उनको एक्चुअली, क्योंकि सरकार तो जो है दोनों तरफ यू नो इस इन विषयों पे जो है पूरी खुली है, समझौते भी कर रही है, नए समझौते भी कर रही हैं, अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है वगैरह, लेकिन जो एक्चुअल डिसीजन मेकर्स होते हैं वो तो इंडिविजुअल एंटरप्राइजेज या इंडिविजुअल लोग होते हैं, तो वो सब कर सकते हैं, चाहे वो ट्रेड है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है, जॉइंट वेंचर्स हैं, एजुकेशन है, टूरिज्म है, तो हर मुद्दे पे मेरा ख्याल है कि काफ़ी कंट्रीब्यूशन हो सकता है।
जी चलते चलते सर, आपका कोई आखिरी संदेश भारतीय मूल के लिए यहाँ पे, भारतीय डायस्पोरा के लिए?
वेल, सबसे पहले तो क्योंकि ये आजकल त्योहारों का मौसम है, अभी हाल ही में दिवाली थी तो सबको हैप्पी दिवाली, हाल ही में ईद थी तो ईद मुबारक, तो हैप्पी गुरुपुरब आप सबको, आगे क्रिसमस आ रही है, मेरी क्रिसमस इन एडवांस, नया वर्ष आ रहा है, कोविड जो है अभी हमारे पीछे रह गया है शायद, और मैं आशा करूंगा कि अगला जो साल है वो आप सब के लिए बहुत खुशी का साल हो, सब जो हैं हंसें, खेलें, फलें फूलें, और हम, हमारा हाई कमीशन कैनबरा में और हमारे तीनों जो कॉन्सुलेट्स जनरल हैं, ये हम सब जो है आपकी सेवा में हाजिर हैं, और कुछ भी हम कर सकें आपके लिए तो हमें, हमारे साथ ज़रूर संपर्क करिएगा। और मैं आशा करता हूँ कि मैं काफ़ी जगह जा पाऊँगा, क्योंकि अब लॉकडाउन खुल गए हैं और आपके दर्शकों से मैं खुद मिल पाऊँगा। धन्यवाद
जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
आपका शुक्रिया, धन्यवाद।
SBS हिंदी, हमारी कहानियाँ फेसबुक पर।